आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष में यहां पे कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रसाद का वितरण ये कार्यक्रम चल रहा है। यही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य हम जो भी करते हैं वो सब केवल इसीलिए ताकि हमारे शरीर को ठीक ठाक बनाए रखें जीने के लिए, और जिए तो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, अन्यथा जीने का कोई मतलब नहीं है, जीवन व्यर्थ है। भगवान की भक्ति बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ जाता है। मनुष्य जीवन हमें केवल भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जगत में लोगों ने अन्य सारे कार्य स्वीकार किए हैं सिवाय भगवान की भक्ति। इसलिए जगत का कल्याण अगर होना है, मनुष्यों का, प्राणियों का, हर देश का, हर प्रांत का, हर व्यक्ति का कल्याण अगर होना है तो केवल प्रचुर मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का और उनके पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। ये वो मार्ग है, ये औषध है, उपाय है जो कि सारे समस्याओं का समाधान है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो कि इस उपाय से ठीक नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके लिए हमें श्रद्धा चाहिए। हम विचार करेंगे कि अरे इतने सारे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? उत्तर यह है अवश्य हां, निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो भी समस्याएं यहां जगत में दिखाई पड़ रही हैं, वो केवल भगवत भक्ति के अभाव के कारण है। क्योंकि लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जाना चाहते हैं, उनसे स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, इसलिए नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और भगवत भक्ति के बिना जब हम इन समस्याओं का समाधान करने जाते हैं तो ये सारे समाधान जो है ये समाधान नहीं बल्कि नए समस्याएं बन जाती हैं, 10 और समस्याएं खड़ी कर देती हैं। इसलिए जब तक समाज में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, शांति, सुख, आनंद असंभव है। केवल कठिन नहीं, असंभव। इसलिए जगह जगह ऐसे कार्यक्रम करना, भगवान के भक्तों को एकत्र होकर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करना ये अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कितने सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान के बारे में। भगवान ने अवतार लिया है इस पृथ्वी लोक पर केवल हमें श्रवण कीर्तन के लिए विषय देने के लिए। अगर भगवान यहां अवतार नहीं लेते तो किस विषय के ऊपर हम चर्चा करते, श्रवण करते? तो भगवान ने अपनी कृपा से हमें इतने सारे सुंदर सुंदर विषय दिए हैं, मधुर लीलाओं का प्रदर्शन भगवान ने किया है और उनका हम श्रवण कीर्तन करके हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। इसका मतलब ये है कि जो भी हम हमारे दैनिक कार्य में हमारे धार्मिक क्रियाएं करते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए हम कार्य करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, गृहिणियां अपना घर चलाते हैं, बच्चों बच्चे अपना, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ हम अपने अपने स्थान में जीवन में कर रहे हों, जब तक कि हमने इन कार्यों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जिनका दूसरा नाम है विश्वक्सेन, उनकी कथाओं के प्रति अगर हमारे हृदय में आकर्षण या रति जागृत नहीं हुआ तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं संसार में श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है और इसका अन्य कोई फल नहीं मिलेगा। विश्वक्सेन कथासु न उत्पादयेत रतिम, अगर हमारे कार्यों के द्वारा ये रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुई भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो ये सारा कार्य हमारा व्यर्थ है। इसलिए बार बार ऐसा सत्संग में आना बहुत ही आवश्यक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छताभयम्। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो हमेशा दुखों से कष्टों से मुक्त होना चाहता है वो क्या करेगा, वो भगवान के कथाओं का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा और स्मरण करेगा। स्मर्तव्यः कीर्तितव्यश्च और श्रवण, ये तीनों चीजें वो करेगा और साथ साथ में भगवान की सेवा करेगा। भगवान ईश्वरो हरि ही, वो हरि जो कि सारे अमंगल चीजों का हरण करते हैं, ऐसे श्री हरि श्री कृष्ण का अगर हम भजन कीर्तन करते रहेंगे तो हमेशा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है या प्राणी है सारे जगत में जो कह सकता है कि वो सुख नहीं चाहता, जो दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता? लेकिन इसके लिए मार्ग ये है, इतना सरल मार्ग है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई कर या टैक्स नहीं भरना पड़ता, बस केवल श्रद्धा से आकर ध्यान से भक्ति भाव से हमें एक कथा का श्रवण करना है, बस इतना सरल पथ भगवान ने हमें दिया है। क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग में हम अन्य तपस्या वगैरह करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के कथाओं का हमें श्रवण रोज करना चाहिए। पिछले कई दिनों से यहां मंदिर में सुबह को कृष्ण कथा चल रही है और इसमें गौचारण लीला चल रही थी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण गायों को वन में ले जाया करते थे और वन में जाकर सुंदर लीलाएं करते थे और लौट कर आते थे शाम को और पुनः सुबह वो फिर से गाय चराने ले जाते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिवस का कार्यक्रम होता था। और सुबह की कथा में प्रसंग ये पहुंचा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को लेकर जब यमुना नदी के पास में जो एक तालाब था उसमें गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां का जो जल है बहुत जहरीला है, उसमें बहुत ज्यादा विष भरा हुआ है और इस विष की वजह से उनके ग्वाल बाल मित्र उसका स्पर्श करने मात्र से बेहोश गिर पड़े। बेहोश तो क्या, उनके प्राण ही निकल गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा तो केवल अपनी दृष्टि मात्र से जो कि अमृत के वर्षा के समान था, उन्होंने इन सारे गौओं को और उन ग्वाल बालों को पुनः जीवित कर दिया। कृष्ण भगवान के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो तो भगवान है, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो प्राण ले सकते हैं वो दे भी सकते हैं, भगवान के हाथ में जीवन और मृत्यु है। जब सारे ग्वालबार और गाय पुनः जीवित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तालाब को दूषित करने का जो काम है ये कालिया नाम के सांप ने किया है जो कि बड़ा असुर है और इस पानी के भीतर रहता है अपने रानियों के साथ में, बच्चों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में, और इन सब सांपों की वजह से सारा जो तालाब है इतना दूषित हो गया है कि ऊपर से जो पक्षी भी उड़ते हैं उस खोलते हुए पानी के प्रभाव से वो भी नीचे गिर पड़ते हैं और मर जाते हैं। मीलों की दूरी तक उस तालाब के पास में कोई स्थर या जंगम या चर अचर वस्तु जीवित नहीं रह सकता था। कोई पेड़ पौधे कीट कीटाणु कुछ भी नहीं रह सकता था। इतना ये जबरदस्त ये विष था कालिया और उसके साथियों का। तो भगवान श्री कृष्ण तो यहां पे अवतार लिए थे दुष्टों का दमन करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे इस दुष्ट कालिया का दमन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां एक कदंब वृक्ष के ऊपर चढ़े। आपने कदंब वृक्ष का नाम अवश्य सुना है। भगवान श्री कृष्ण लीला से संबंधित है ये कदंब वृक्ष। व्रज वृंदावन के बाहर बहुत कम दिखने में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस कदंब वृक्ष के ऊपर चढ़े और जैसे एक पहलवान कुश्ती करने के पहले अपने भुजाओं का स्फोटन करता है वैसे करके वो कूद पड़े पानी में और भीषण विस्फोट हुआ उनके कूदने के मारे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण केवल एक छोटे 5-6 साल के बालक थे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो साक्षात भगवान है। भगवान चाहे बाल लीला कर रहे हो, कुमार लीला कर रहे हो या कोई और लीला कर रहे हो, भगवान की शक्ति में घटन नहीं होता। भगवान हर अवस्था में भगवान ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हालांकि कोमल नाजुक 5 साल के बालक के समान दिखाई पड़ रहे थे, फिर भी उनकी शक्ति बिल्कुल उतनी ही थी जैसे कि ऊपर वैकुंठ में उनकी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कितनी है? अपार है, असीमित है। यही है भगवान का मतलब। तो भगवान जब उस तालाब में नीचे आए तो ऐसे प्रतीत हुआ कालिया और उसके साथियों को कि एक बड़ा पहाड़ नीचे गिर पड़ा हो पानी में। और फिर भगवान श्री कृष्ण इससे संतुष्ट नहीं हुए, अपने नन्हे भुजाओं को वो गोल गोल घुमाने लगे, पानी को छिड़कने लगे। जैसे कि अक्सर छोटे लड़के जब वो तालाब में स्नान करने जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण गोल 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 घूमकर पानी में अकेले विहार कर रहे थे। थे तो छोटे बालक, लेकिन कालिया को कैसे प्रतीत हुआ? कालिया को दिखाई पड़ा कि ये कोई मतवाले हाथी के समान ऐसे भीषण घोष निकाल रहा है, इतने भीषण आवाज आ रहे हैं कि कालिया को असहनीय हो गया। कालिया को लगा कि मेरी इतनी पिटाई हो रही है कि मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं। अभी बहुत दर्दनाक हो गया कालिया के लिए और कालिया तेजी से ऊपर चले आया देखने के लिए कि कौन व्यक्ति है जिसका यह साहस हुआ है कि मेरे सदन या मेरे भवन के ऊपर वो अतिक्रमण इस प्रकार से करे। आज तक किसी का साहस नहीं हुआ था क्योंकि कालिया हजारों हजारों सालों से वहां उस तालाब में निवास करता था और उस विष की वजह से कोई भी प्राणी वहां पास में भी नहीं आता था। तो फिर कालिया सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने मेरे घर में ऐसा आक्रमण किया है। तो कालिया जब बाहर आए तो कालिया ने देखा भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप, पीतांबर धारण किए हुए और शरीर पर चंदन का लेप और सुंदर मोती जैसे दांत, एक हल्की मुस्कान चेहरे पे, कमल नयन, और भगवान श्री कृष्ण बिना डरे हुए खेल क्रीड़ा जल क्रीड़ा कर रहे थे बड़े हसमुख चित्त से। और जब कालिया ने देखा तो इतना क्रोध आ गया कालिया को कि इतना सुंदर दृश्य श्री कृष्ण का देखने के बावजूद उसका हृदय पिघल नहीं गया। तुरंत उसने अपने फणों को उठाया और क्रोध से डस दिया श्री कृष्ण को, काट दिया वक्षस्थल में और फिर अपने मजबूत भुजाओं से श्री कृष्ण को घेर कर पकड़ लिया। श्री कृष्ण तो लीला कर रहे हैं इसलिए वैसे के वैसे कालिया की भुजाओं में वो गतिहीन अवस्था में रहे, हिले नहीं। कालिया को लगा कि अब मैं इस बच्चे को आसानी से खत्म कर सकता हूं। उस समय वहां नदी के तट पर जो ग्वाल बाल थे और थोड़े बहुत जो गोपगण इधर उधर गायों को चराने के लिए उस तरफ आए थे, वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान जो कि उनके प्राण है वो अभी कालिया के भुजाओं में बंद है। तो हाहाकार मच गया उधर और बेहोश होकर वो सारे ग्वाल बाल गाय और थोड़े बहुत गोप जो वहां आए थे बेहोश होकर गिर पड़े। उधर आकाश में भूमि पर और सारे ब्रजवासियों के शरीर में सारे प्रकार के अशुभ लक्षण और चिन्ह दिखाई पड़ने लगे और नंद महाराज यशोदा माता और सारे वृंदावन के निवासी ये सोचने लगे कि अवश्य इस सारे अशुभ लक्षणों को देखकर हमें लगता है कि कृष्ण भगवान के लिए कोई खतरा है, अन्यथा ऐसे अशुभ लक्षण क्यों दिखाई पड़ते। वृंदावन के निवासी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उसकी कोई सीमा नहीं। जो भी गोपगण थे वहां गोपियां थीं, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे। अब ये संसार में हम देखते हैं कि हरेक व्यक्ति अपने बच्चे से प्रेम करता है, भले दूसरे बच्चों से प्रेम करता हो लेकिन दूसरे बच्चों से ज्यादा अपने बच्चे को प्रेम करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन वृंदावन की विशेषता यह थी कि वहां के सारे निवासी भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे, इतनी थी उनकी भक्ति। क्योंकि ये सारे ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पिछले जन्मों में कई जन्मों में उन्होंने बहुत तपस्या की हुई थी, वो भगवान के भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त, इसलिए उनको इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के लीला में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। और इस प्रकार से इतने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे कि 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे, हमेशा भगवान के बारे में बोलते थे, सुनते थे। और कृष्ण भगवान जब वन में जाते थे तो उनके बिना रह नहीं सकते थे, शाम कब आएगी ये प्रतीक्षा करते थे सदैव। तो जब ब्रजवासियों ने देखा या समझा कि शायद श्री कृष्ण की जान के ऊपर खतरा है तो वह सब दौड़कर आ गए। वैसे भगवान की योग माया के प्रभाव से उनको पता नहीं चला कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनके लिए कभी भी किसी भी अवस्था में कोई खतरा नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिमान है, पूरी तरह से समर्थ हैं अपने आप को बचाने के लिए और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संरक्षण करने के लिए। भगवान में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन अति प्रेम की वजह से ये ब्रजवासी इस बात को भूल गए, उनकी आंखें ढक गई थीं, इसलिए केवल वो श्री कृष्ण को अपना छोटा बच्चा मानते थे, वृंदावन का प्राण धन मानते थे। और इसलिए दौड़कर सारे ब्रजवासी जमुना की ओर चले, बच्चे बूढ़े स्त्रियां पुरुष यहां तक कि गाय गाय के बछड़े जो भी सब थे सारे जंगल की ओर जमुना जी की ओर निकल पड़े। और फिर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों कम चरणों के चिन्ह वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, उनका पीछा करते करते वो सीधे पहुंच गए उस स्थान पर जिस तालाब में कालिया निवास करता था। और उन्होंने जाकर क्या देखा, अद्भुत दृश्य, ऐसा दृश्य जिसको देखकर उनका मन चकरा गया। और उन्होंने देखा कि ये भीषण जहरीला सांप जिसका रंग लोहे से भी ज्यादा काला था, जिसके नसिकों से जिसके आंखों से विष की अग्नि बाहर निकल रही है और जो कांप जो ऊंचे ऊंचे बहुत ही जोर से सांस ले रहा है क्रोध के मारे, उसकी मजबूत भुजाओं में नन्हा सा कोमल श्री कृष्ण वहां बंधे हुए हैं। तो ये जब दृश्य देखा वहां सारे ब्रजवासियों ने तो उनकी दुख की सीमा नहीं रही। वहां पर नंद महाराज जो कि कृष्ण के पिता थे वो जोर से कहने लगे कि अरे कृष्ण तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। सारे ब्रजवासी जन इतने भ्रांति में पड़ गए, उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कालिया के भुजाओं में ये कृष्ण कैसे चला गया, क्या कृष्ण खुद कूद गया, या फिर क्या कालिया जमीन पे आके कृष्ण को छीन कर ले गया? क्या हुआ है, कैसे ये सब हो गया? और जब जमीन पर वो देखने लगे तो उन्होंने देखा कि सारे गाय, गाय के बछड़े और ग्वाल बाल ये सारे बेहोश पड़े हैं दुख के मारे, क्योंकि वो जीवित नहीं रख सकते, नहीं रह सकते थे। तो इस प्रकार से कोई समझाने के लिए था नहीं, खबर देने के लिए था नहीं कि वास्तव में हुआ क्या। तो इस प्रकार से नंद महाराज जब बड़े जोर से शोक व्यक्त करने लगे तो ऐसे बेहोश होकर गिर पड़े कि जैसे तूफान में एक वृक्ष मूल से उखड़ा जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। और वहां पर माता यशोदा, कृष्ण भगवान की माता, वो भी वहां देख रही थी। वो भी तुरंत हाहाकार करके, शोक करके नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई, मानो कि जैसे एक लता भी तूफान में गिर जाता है। इस प्रकार से अन्य गोपियां, गोप वगैरह सारे बड़े दुखद अवस्था में थे। सब लोग देखने का प्रयास कर रहे थे कि क्या हो रहा है, केवल इतना देख रहे थे कि शायद अब कृष्ण की मृत्यु आनी है, और इस विचार से ही सारे लोग बेहोश होकर गिर पड़े। उधर जो तरुण गोपियां थीं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, वो भी आए थे, वो भी इस दृश्य को देखने लगे। गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वश्रेष्ठ है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता। ये गोपियां भी बड़े बड़े ऋषि मुनि पिछले जन्मों में थे, इसलिए उनको यहां आकर ऐसे श्रृंगार रस में, माधुर रस में भगवान से संबंध रखने का अवसर मिला। इस समय ये गोपियां केवल 5 साल की थीं। श्री कृष्ण भी उस समय केवल 5 या 6 साल के थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उस समय से ही, बल्कि उससे पहले से बहुत गाढ़ा तीव्र प्रेम जागृत हो चुका था। तो गोपियां जो हैं, गोप्यो अनुरक्त मनसो भगवती अनंते, जिनके मन में भगवान के प्रति तीव्र अनुरक्ति या आसक्ति थी, वो देखने लगे कि श्री कृष्ण को क्या हुआ है, कालिया के भुजाओं में बंद है, तो तुरंत वो भी नीचे गिर पड़े। और गोपियों की मृत्यु नहीं हुई और ब्रजवासियों की मृत्यु नहीं हुई, इसके लिए एक ही कारण है, और वो ये है कि वो एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बात बताने लगे, कथा करने लगे। केवल यही वजह है जिसकी वजह से उनका प्राण शरीर में रहा और प्राण बाहर नहीं गया। तो गोपियां भी याद करने लगी कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की हल्की मुस्कान थी, किस प्रकार श्री कृष्ण बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लीला करते हैं। तो ऐसे कथन करते करते गोपियां कभी बेहोश होती, फिर से होश आ जाता, फिर से बेहोश हो जाती। इस प्रकार से गोपियों की अवस्था हुई। उधर जो माता यशोदा थी, जो कि कृष्ण की माता थी, हम कल्पना कर सकते हैं कि उनकी दशा क्या हुई होगी। तह कृष्ण मातरम अपत्यम अनुप्रविष्टाम। मातरम कृष्ण, कृष्ण की माता, उन्होंने देखा कृष्ण को इस अवस्था में, अपत्यम अनुप्रविष्टाम, तो अपने पुत्र को देखती रही, अपने पुत्र से अपनी आंखें हिला नहीं सकी। और माता यशोदा दुख के मारे, वो भी यमुना जी में कूदने के लिए जा रही थी। सब ब्रजवासी सोच रहे थे कि अगर कृष्ण नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। वो सब अपने प्राण को त्यागने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये है असली भक्ति। भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब है कि भगवान को भक्त इतना प्रेम करता है कि अपने बच्चों की बात तो दूर है, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता है। ये है असली भक्ति। लेकिन समाज में ये गलत धारणा है लोगों की। वो मंदिर में जाते हैं लोग और नाना प्रकार की चीज मांगते हैं भगवान से। मुझे धन चाहिए, मुझे मेरे व्यवसाय में कुछ प्रगति चाहिए, मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छे पति पत्नी चाहिए। तो ऐसे भौतिक चीज मांगते हैं भगवान से, लेकिन ये एक प्रकार का व्यवसाय हो गया। ये तो भक्ति नहीं है। इसीलिए ब्रजवासियों के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या चीज है। भक्ति का मतलब है कि जब हमें भगवान की सेवा के अलावा और कोई भी इच्छा नहीं है, ये है भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो ब्रजवासी हैं, वो सारे कूदना चाहते थे जल में, यशोदा माता भी जाना चाहती थी अंदर, लेकिन किसी न किसी तरह से अन्य महिलाओं ने उनको रोक के रखा। वो अन्य महिलाएं, अन्य गोपियां, वो भी इतने ही दुखी थी, लेकिन फिर भी कम से कम वो तो मां नहीं थी, इसलिए यशोदा को रोक पाई। और फिर यशोदा माता और अन्य गोपियां वो फिर से कृष्ण की ओर देखकर फिर वो कथा करने लगे, कृष्ण का स्मरण करने लगे। और उधर धीरे धीरे से ये सारे गोपियां केवल ऐसे खड़े होकर या बैठकर कृष्ण की ओर देख रही थी, मानो कि वो शव है। केवल फर्क ये था कि इन शवों का के आंखें खुली थी, तो ऐसे खुली आंखों से केवल देख रहे थे कृष्ण की ओर। उनको पता नहीं चल रहा था दिन है या रात है या क्या चल रहा है, केवल उनको इतना पता था कि कृष्ण उस कालिया के भुजाओं में बंद है और शायद कृष्ण हमारे पास लौटकर नहीं आ पाएगा, इतना ही उनको मालूम था। और इस प्रकार से कृष्ण की ओर देखते देखते वो केवल यूं ही एक मृत शरीर या शव की बरात की तरह रह गए। उधर बलराम जी अकेले एक व्यक्ति थे जो कि दुख की अवस्था में नहीं थे, वो शोक नहीं कर रहे थे। सारे अन्य ब्रजवासी शोक कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन बलराम जी ऐसे नहीं रो रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वो हल्की तरह से हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि बलराम जी जानते थे कि ये तो कृष्ण, ये तो भगवान है, मेरा भाई है, लेकिन ये तो सर्वशक्तिमान है। ये ब्रजवासी प्रेम के मारे नहीं पहचान रहे हैं कि ये बाल कृष्ण वास्तव में भगवान है, लेकिन मैं तो जानता हूं, तो मुझे शोक करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बलराम जी ने जब देखा कि सारे ब्रजवासी जिनके लिए कृष्ण प्राण धन थे, वो अभी प्राण त्यागने के लिए भाग रहे थे यमुना जी की ओर, और सब लोग चाहते थे कि वो जाकर कृष्ण को बचा लें, कालिया की भुजाओं को हटाएं, कालिया से युद्ध करें। हर एक ब्रजवासी ऐसे सोच रहा था कि हम काले के पास जाकर हम युद्ध करेंगे और कृष्ण को छुड़ा देंगे। तो बलराम जी ने जब ये देखा तो बलराम ने उन सबको रोकने का प्रयास किया। उनमें से कई ब्रजवासियों को बलराम जी ने अपने हाथों से शारीरिक पद्धति से रोक दिया, और कई जो ब्रजवासी थे उनको केवल अपने नेत्रों से इशारा करके उनको रुकवा दिया, और कई ब्रजवासियों को अपने मीठे मीठे अमृतमय वचन से उनके हृदय को शांत किया। तो बलराम जी नंद महाराज से बोलने लगे, हे पिताजी, आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, श्री कृष्ण आपको इतने प्रिय हैं कि इस वक्त आपका शरीर, आपका हृदय जल रहा है इस चिंता के मारे, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए इस शरीर के बारे में जो कि केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही चल रहा है। हे माता यशोदा, आप मेरे शब्दों में विश्वास कीजिए, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हे ब्रजवासी गण, हे गोप, हे गोपियां, ये जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये कृष्ण को आप नहीं पहचानते हैं, हालांकि कृष्ण मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं इस कृष्ण को अच्छी तरह से जानता हूं। इसकी शक्ति अपार है और इसके लिए एक साधारण कालिया जैसे सांप का वध करना या दमन करना बहुत आसान सी बात है। ये शेर जैसे कृष्ण जो है बहुत आसानी से अभी विजय प्राप्त कर लेगा, इसलिए केवल मैं ही हूं जो कि ये कृष्ण को जानता हूं। बड़े बड़े देवी देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, वो भी श्री कृष्ण को पहचान नहीं सकते हैं। कभी कभी वो भी श्री कृष्ण के लीलाओं को देखकर कृष्ण के अस्तित्व के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, उनकी भ्रांति हो जाती है। तो जब बड़े बड़े देवी देवता भी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, तो आप सब भी कृष्ण को देखकर भ्रमित हो गए हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन चिंता नहीं करना, मैं जानता हूं ये कृष्ण क्या चीज है, ये कौन है, और बहुत ही जल्दी कृष्ण का विजय होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। तो श्री बलराम जी के इन मधुर वचनों को सुनकर ब्रजवासी धीरे धीरे से रुक गए और थोड़ा बहुत सांस लेने लगे, और उनके हृदय में जो अग्नि जल रही थी, दुख की प्रज्वलित अग्नि, धीरे 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 से थोड़ी कम होने लगी। लेकिन मिट कैसे जाती, क्योंकि श्री कृष्ण तो अभी भी कालिया के भुजाओं में थे। वास्तव में श्री कृष्ण कुल मिलाकर पूरे के पूरे 2 घंटे कालिया के भुजाओं में बंद रहे। कालिया ने केवल श्री कृष्ण को बांध के अपने भुजाओं में रख दिया, और कालिया भी बड़े क्रोध भरे आंखों से कृष्ण की ओर देखता और कभी ब्रजवासियों की ओर देखता। ये कालिया के 101 फण थे, और हर एक फण से उसकी आंखों से नसिकों से विष निकल रहा था, जहरीला विष अग्नि के बराबर, जिससे कि यमुना जी का पानी खोल रहा था। और इस प्रकार से 2 घंटे पूरे बीत गए। तो हम कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य, जब ऐसे अवस्था में एक क्षण भी कृष्ण को देखकर जब ब्रजवासियों का इतना दुख हुआ, तो उन्होंने 2 घंटे कैसे बिताए होंगे, कितना कष्ट उनको हुआ होगा। तो ये प्रश्न आता है कि भगवान अपने भक्तों को भला ऐसे जानबूझकर कष्ट क्यों देना चाहते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो उनको कालिया का तुरंत वध करना कोई कठिनाई की बात नहीं थी। तुरंत कूद के पानी में केवल अपने अंगूठे से या नाखून से वो कालिया का वध कर सकते थे। नाखून से और उंगली से क्यों, केवल अपने विचार मात्र से। स्वाभाविक ज्ञान बलक क्रियाच, भगवान जिस चीज का संकल्प करते हैं वो तुरंत प्रत्यक्ष रूप में हो जाता है। भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। जब हम कोई संकल्प करते हैं, हमें इतना पैसा कमाना है, परीक्षा में इतने मार्क लाने हैं, या हमें ये काम करना है, तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं, फिर इन योजनाओं के अनुसार हमें काम करना पड़ता है, और कभी कभी फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान अगर केवल संकल्प करें, इच्छा मात्र करें, तो उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये है मतलब भगवान होने का। तो श्री कृष्ण अगर चाहते तो आसानी से ऐसा कर पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो प्रश्न आता है, फिर क्यों ऐसे श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासी भक्तों को इतने कष्ट में डाला। इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि वृंदावन के निवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जीवन मुक्त पुरुष और स्त्री थे, प्राणी भी, वहां के गाय भी मुक्त थे, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में वो अटकने वाले नहीं थे, सारे सिद्ध थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला में आए थे भाग लेने के लिए, और श्री कृष्ण के लीलाओं के अमृत का स्वाद लेने के लिए, और इन लीलाओं के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए। आखिर श्री कृष्ण तो अकेले लीला करना पसंद नहीं करते हैं, अपने भक्तों के साथ में रहना चाहते हैं, भक्तों के संग में वो लीला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने जाना कि ये सब मेरे नित्य पार्षद हैं, मेरे शुद्ध भक्त हैं, और इनके प्रेम को मुझे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे जब अवस्था में, विरह में, या भगवान श्री कृष्ण के दुख में ये जब ब्रजवासी थे, तो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, हजारों हजारों करोड़ों गुण और मात्रा में बढ़ गया। यहां संसार में हम देखते हैं कि द्वंद्व रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। हम दुखों का निवारण करना चाहते हैं और सुख की वृद्धि करना चाहते हैं, और जब दुख आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब सुख आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो द्वंद्व है संसार के, ये स्वप्न के बराबर है। वास्तव में चाहे ये सुख हो या दुख, संसार में सभी कुछ दुख है। क्योंकि जब तक हम आत्मा के स्तर में नहीं आते, भगवत भक्ति के स्तर में नहीं आते, तब तक हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर रहना पड़ेगा। और इस भौतिक शरीर में जन्म लेने का मतलब है दुख प्राप्त करना। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक दुख होगा, क्योंकि ये भौतिक शरीर के साथ साथ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और नाना प्रकार के कष्ट जबरदस्ती हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो ब्रजवासी थे ये आध्यात्मिक स्तर पर स्थित थे, ये हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्ति की अवस्था में जो उनको दुख का अनुभव हुआ कृष्ण की विरह में, ये दुख वास्तव में दुख नहीं था बल्कि सबसे उच्च कोटि का दिव्य आनंद था। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। तो अपने अंदर ही अंदर ऐसे ही अवस्था में वो ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण दया के सागर हैं, अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा रखते हैं, करते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे ब्रजवासी भक्त इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मुझे कालिया के भुजाओं से निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी शक्ति लगाई। भगवान को शक्ति लगाने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से भगवान ने अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया। और जैसे श्री कृष्ण ने शक्ति लगाई, शक्ति बढ़ाई अपनी, तो कालिया को ऐसे जोर अपने भुजाओं पर महसूस हुआ कि कालिया ने सोचा कि अरे, इस छोटे बालक के अंदर इतनी शक्ति। दो घंटों तक, जब तक कि कालिया ने श्री कृष्ण को बांध के रखा था और कृष्ण भगवान यूं ही गतिहीन अवस्था में रहे थे, कालिया ने सोचा था ये तो एक साधारण बालक है, मूर्ख बच्चा है, यहां कूद पड़ा है, उसे पता नहीं चला कि मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। लेकिन अब जबकि वो अपने भुजाओं को बढ़ाने लगे, शक्ति बढ़ाने लगे, तो उस प्रकार कालिया को इतना जोर भुजाओं पे दर्द लगा कि धीरे 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 से उसने कृष्ण भगवान को छोड़ दिया। जब मुक्त कर दिया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण तुरंत कालिया के भुजाओं से बाहर आकर जल में फिर से तैरने लगे और उस समय अति सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। और मान लो कि एक पूर्णिमा का चांद जैसे एक काले वृक्ष के शाखाओं के बीच में कैसे दिखता है, इर्द गिर्द जो शाखाएं ऐसे एक मानो की एक गहना बना के चंद्रमा को सुशोभित कर रही हैं, ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण ऐसे सुंदर लग रहे थे उस जल में। और वहां पर धीरे धीरे से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को मुक्त करके ब्रजवासियों की ओर देखा और एक ऐसी मुस्कान उन्होंने दे दी। वहां इस प्रकार से सुंदर तरह से हंसे कि सारे ब्रजवासियों का दुख मिट गया। और फिर वहां से ऊपर से जो कि देवी देवतागण इस लीला को देख रहे थे वो भी बड़े चिंतित हो गए थे। वो भी हाहाकार वहां भी मच गया था कि श्री कृष्ण का क्या होगा। जिस प्रकार से जब कोई सिनेमा देखने जाते हैं, जाइए मत, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति जाते हैं तो वहां पर जब कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, एक मारपीट हो रही होती है, लोग उस घटना से इतने अपने आप को जोड़ लेते हैं कि जहां जब रोना धोना होता है वो भी रोने लगते हैं, वहां हंसता है तो वो भी हंसते हैं, और वहां किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने जा रही है तो उनको बहुत बुरा लगता है। हालांकि वो जानते हैं कि ये नाटक है, लेकिन नाटक में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो भी बह जाते हैं। तो भगवान की लीला देखने के लिए भी सारे देवी देवता गण बादलों के पीछे से देख रहे थे। जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी प्रेम की वजह से वो भी चिंतित हो रहे थे जिस प्रकार से ब्रजवासी चिंतित थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी मुक्त हो गए हैं, फिर से जल में बाहर आ गए हैं, तो उनके हर्ष और उल्लास की सीमा नहीं रही। जोर जोर से वाद्य बजाने लगे, धुंध भी डिम 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 डुम 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 उनके भी आवाजें थी, लेकिन यहां हमारे जो वाद्य हैं उनके जैसे नहीं, बहुत मधुर भेरी और अलग अलग जो उनके वाद्य हैं वो ऊपर से बजाने लगे। और इन सारे शब्दों का ये जो ध्वनि है इतनी जोर से सुनाई पड़ रही थी कि ब्रजवासी जो कि बेहोश पड़े थे नीचे, वो सब अपने हाथों के सहारे ऊपर उठे, इधर उधर आकाश में देखने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। फिर उनको पता चला कि ये ऊपर देवी देवतागण अभी दुंदुभी भेरी इत्यादि बजा रहे हैं। तो ये आवाजें सुनकर और ये शंख की ध्वनि भी सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगा, और फिर तुरंत आगे आंखें खोलकर देखा तो श्री कृष्ण जल में हैं और बलराम जी वहां पर पास में हैं। जब ब्रजवासियों ने कालिए को इस वक्त देख लिया तो कालिया तो बहुत गुस्सा हो गया था, अभी उसका गुस्सा बढ़ गया था क्योंकि कृष्ण अचानक उसके भुजाओं से मुक्त हो गया था। तो कालिया का गुस्सा इतना बढ़ गया था, आंखें पहले से लाल, और जब गुस्सा बढ़ गया तो इतना कुरूप स्वरूप लग रहा था कालिया का कि केवल उसको देखने मात्र से सारे ब्रजवासी घबरा गए, बहुत भयभीत हो गए। और कालिया के फणों में, 100 फणों में जो मणियां थी वो चमक रही थी, और उन मणियों की रोशनी से सारे आकाश में मानो कि एक तरह का प्रकाश वहां फैल गया था। और कालिया के जो आंखें हैं और उसका मुख है, ऐसे लग रहा था कि मानो एक पात्र जिसमें उबलता हुआ घी है, घी उबलते हुए घी में से कैसे वाफ अगर निकलता है, ठीक ऐसे लग रहा था कालिया का भयानक शरीर। और ब्रजवासीगण ये सब देख रहे थे, और अपने जो हर एक फण के अंदर से जो उनका जिह्वा था जो कि दो में विभाजित था, अपने जिह्वाओं से अपने होठों को चाटने लगा, जहर से डसने के लिए कोशिश करते जा रहा था कालिया श्री कृष्ण को। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अगली लीला आरंभ की। श्री कृष्ण बहुत तेजी से, चतुराई से कालिया के गोल गोल घूम रहे थे। पानी के भीतर थे कृष्ण, याद रखिए, जमीन के ऊपर नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान आकाश में, भूमि पर, जल में उतने ही निपुणता से, दक्षता से चल सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बड़े आसानी से, बड़े तेजी से और बड़े मधुर ढंग से घूमते जा रहे थे कालिया के इर्द गिर्द। कालिया भी घूम रहा था कृष्ण भगवान को डसने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा कालिया तेज घूमे उससे ज्यादा तेज कृष्ण घूमते थे। तो घूमते घूमते कभी कालिया यूं डस देते तो कृष्ण इधर आ जाते, कालिया उधर डस देते तो कृष्ण वहां चले जाते। और कालिया का क्रोध बढ़ते जा रहा था क्योंकि कृष्ण को का स्पर्श करने के लिए ही वो असफल होता जाता था। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे अपनी कला का प्रदर्शन किया, और उधर धीरे धीरे से कालिया की शक्ति में घटन होने लगी, क्योंकि कृष्ण जानबूझकर कृष्ण के क्रोध को उकसाते थे और कालिया ज्यादा से ज्यादा वहां आक्रमण करने का प्रयास करता। और इस समय बलराम जी जो वहां खड़े थे वो ब्रजवासियों से बोलने लगे, देखो श्री कृष्ण का सुंदर रूप कितना सुहावना लगता है, कितना मनोहर है, हालांकि है इतना नाजुक, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि मानो ये कालिया के लिए मूर्तिमान मृत्यु का स्वरूप है। अभी कृष्ण भगवान हो रहे हैं, देखो अपने कमर के ऊपर जो पट्टा है वो अभी अच्छी तरह से बांध रहे हैं, अपने पगड़ी को अभी अच्छी तरह से बिठा रहे हैं जो कि हिलने से थोड़ा हिल गया है, और अपने बालों को ठीक कर रहे हैं। अभी कृष्ण भगवान युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और कृष्ण अभी बहुत ही जल्दी विजय प्राप्त करने वाला है। तो बलराम जी की आवाज सुनकर सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए, और फिर सामने अपनी आंखों के सामने ये लीला देख रहे हैं जमुना जी के अंदर ये सब क्या चल रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अभी
लीला का और एक भाग शुरू कर दें। तो बड़े आसानी ने श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उठाया और कालिए के 101 फनों में से एक फन को पकड़ा, नीचे दबा दिया आसानी से और उसके ऊपर चढ़ गए। कोई कठिनाई नहीं। कालिया को आश्चर्य हुआ कि अरे इस बच्चे के अंदर इतनी शक्ति, मेरा एक फन ऐसे उठाकर नीचे दबा दिया और इतने आसानी से चढ़ गया। तो कालिया को आया बहुत गुस्सा और कालिया फिर किसी न किसी प्रकार से डसने का प्रयास कर रहा था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण तो ऊपर थे, कैसे डसने। और फिर कृष्ण भगवान ने नृत्य करना आरंभ कर दिया फणों के ऊपर। यहां सुखदेव गोस्वामी भी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि कालिया कृष्ण के सामने सर झुकाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने जबरदस्ती उनके गर्दन को पकड़ लिया, नीचे कर दिया और खुद चढ़ गए। इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि जो लोग भगवान के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, अंततः भगवान भी उनकी गर्दन पकड़कर एक दिन उनको नीचे जबरदस्ती झुकवाएंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं मूर्ति मृत्यु का मूर्तिमान स्वरूप हूं, काल के रूप में आकर मैं सब कुछ नष्ट कर देता हूं, कोई भी मेरे काल रूप को सहन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बड़े जितने भी राजा महाराजा योद्धा वीर शूर पुरुष जितने भी रहे, सब को भगवान के काल शक्ति के सामने हार मानना पड़ा है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है इतिहास में जिसने कि आज तक काल शक्ति को जीत लिया है और भविष्य में भी नहीं होगा। भगवान की काल शक्ति परम है, इसलिए जो व्यक्ति भगवान के सामने सर झुकाना नहीं चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में आके उनके सारे घमंड को चूर चूर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनके लिए मृत्यु ये तो कोई खतरे की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यर्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो लोग भगवान की कथा नहीं करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनके लिए हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त से एक दिन जैसे बीत जाता है, वो मृत्यु के एक दिन और करीब पहुंचते हैं। तो अभक्तों के लिए हर दिन जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? उनके लिए तात्पर्य है कि ये मृत्यु के एक दिन करीब और पहुंचा है, बस उसने और कुछ लाभ प्राप्त नहीं किया है, केवल मृत्यु के एक दिन और आगे करीब पहुंचा है। लेकिन भगवान के भक्त उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के बारे में वार्तालाप करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए सूर्योदय होना और सूर्यास्त होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके लिए अमृत्य अवस्था निश्चित है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने वाले हैं, इसके लिए उनके लिए मृत्यु से कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन कालिया जैसे दुष्ट लोग जो कि भगवान के सामने झुकाना नहीं चाहते अपना सर, अंततः भगवान उनको जबरदस्ती सर झुका देते हैं। तो कालिया की भी ऐसी ही दशा हुई और कालिया के 101 फण ऊपर नीचे बड़े तेजी से होते जा रहे थे, क्योंकि कालिया किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को डसने का प्रयास कर रहा था। कभी कृष्ण इधर नाचते तो कालिया यूं घूमकर ऐसे डसने का प्रयास करते, कभी वैसे। बड़े तेजी से कालिया अपने फणों को हिलाते जा रहा था, अपने जहर निकालकर कृष्ण को डसने का प्रयास कर रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा गति किसकी हो सकती है? जितनी तेजी से कालिया अपने फणों को हिला रहा था, उससे तेज गति से भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे थे। अभी किसी स्टेज पर नृत्य करना, जमीन पर नृत्य करना, ये एक बात है, लेकिन इतने अस्थिर बुनियाद पे जो कि इतनी तेजी से हिल रहे हैं, 101 अलग अलग प्लेटफॉर्म और उनके ऊपर जो हिलते रहते हैं इतनी तेजी से, और भगवान श्री कृष्ण केवल आसानी से एक फण के ऊपर से आसानी से दूसरे में नृत्य करते हुए छलांग मारी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से सारे 101 फणों के ऊपर नृत्य करते हुए रहे। और ऐसा नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी तरह से हड़बड़ाकर वो नृत्य कर रहे थे, ऐसा नहीं। इतना सुंदर नृत्य था, हर कदम उनका ऐसे लग रहा था कि मानो आदर्श। जब कृष्ण भगवान ने अपना नृत्य का प्रदर्शन शुरू कर दिया तो सारे ब्रह्मांड से जो बड़े बड़े देवी देवता थे, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर, सब इस नृत्य को देखने के लिए आए। कृष्ण का और एक नाम है वृंदावन नटवर। वृंदावन में नृत्य करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ। वैसे ये सारे ऊपर के लोगों के निवासी अपने अपने वाद्य इत्यादि लेकर साथ में आए और कृष्ण के नृत्य में वो बैकग्राउंड म्यूजिक देने लगे, पीछे रहकर वो संगीत बजाने लगे। जब कोई व्यक्ति यूं ही अकेले में नृत्य करता है तो उतना आनंद नहीं आता, जब उस नृत्य के साथ में कोई संगीत होता है तब वो नृत्य ज्यादा मीठा लगता है। और फिर संगीत में और नृत्य में तालमेल होना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से सारे जो देवी देवता हैं, किन्नर, गंधर्व इत्यादि, वो नाना प्रकार के धुन तेज गति से, धीरे के, हल्के गति से, मध्यम गति से बजाने लगे। और बजाते बजाते सुंदर सुंदर धुन वगैरह वो उनकी रचना करने लगे, और साथ साथ में कभी हल्के आवाज में, कभी ऊंचे आवाज में, और इस प्रकार से नए नए धुन एक के बाद एक ये सारे देवी देवता करने लगे। और कृष्ण भगवान बिल्कुल धुन में धुन मिलाकर, जैसे वो धुन बजाते थे, अगर तेज जाते थे तो कृष्ण अपना नृत्य तेज करते, जब वो हल्का करते तो कृष्ण भगवान भी धीरे से चलते, और अगर ऊंचा स्वर हो जाता कृष्ण भी उसी प्रकार से ऊंचे कूद कूद कर नृत्य करते। तो बिल्कुल जैसे ये वाद्य बजा रहे थे, संगीत कर रहे थे, उस प्रकार से कृष्ण अपना नृत्य कर रहे थे। ऐसा नृत्य का प्रदर्शन किया भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि शायद इतिहास में किसी ने नहीं किया हो और भविष्य में भी कोई कर नहीं पाएगा। भगवान के अलावा ऐसा नृत्य कोई नहीं कर सकेगा, वो भी जहरीले सांप के ऊपर, और वो भी कालिया जैसे जहरीला सांप। तो कृष्ण भगवान ऐसे नृत्य करते गए और उनके साथ में अप्सरा, गंधर्व, जो कि अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, वो सब उनके साथ में नृत्य करने लगे। लेकिन देखने लगे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं उस हिसाब से वो उनको ताल में ताल मिलाकर नहीं कर पा रहे हैं। फिर बहुत कोशिश की उन्होंने बहुत लंबे समय तक, लेकिन फिर असफल रहे। फिर उन्होंने छोड़ दिया ताल में ताल मिलाना, उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। फिर वो हर्ष उल्लास से अपने हरे एक फिर अपने अपने तरह से नाचने लगे, अप्सरा, गंधर्व। तो कल्पना कीजिए कैसा दृश्य था, वहां ब्रजवासी गण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कृष्ण का सुंदर नृत्य कालिये के ऊपर। अभी तक उनका भय गया नहीं, लेकिन फिर भी इतना मनोहर दृश्य, और ऊपर से देवी देवता हर्ष उल्लास के मारे वहां नाच रहे हैं, उछाल उछल कूद कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को देखकर सारे ब्रह्मांड में मानो कि आनंद फैल गया। उधर केवल एक व्यक्ति को आनंद नहीं हो रहा था, कालिया। कालिया के फणों के ऊपर श्री कृष्ण ऐसे अपने नाजुक कदम रख रहे थे जैसे कालिया को प्रतीत हुआ कि वज्र का प्रहार हुआ मेरे फण के ऊपर। थे 5 साल 6 साल के बालक, नाजुक कोमल चरण, और हल्के से केवल वो एक फण से दूसरे एक फण के ऊपर चलते थे, लेकिन कालिया को उनका वजन बहुत ज्यादा प्रतीत हुआ कि मानो ब्रह्मांड का ब्रह्मांड मेरे फण पे आ गया है। असहनीय हो गया कालिया के लिए। वैसे योगी लोग जो होते हैं उनकी कई सिद्धियां हो सकती हैं, उनमें से एक सिद्धि है कि वो अपने आप को भारी से भारी बना सकते हैं या हल्के से हल्का। इसलिए कभी कभी वो हवा में उड़ भी सकते हैं और इतना भारी हो जाते हैं कभी कभी कि कोई उनको हिला नहीं सकता। बड़े से बड़े पहलवान भी आ जाएं तो वो भी उनको हिला नहीं सकते। तो साधारण योगी भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण योगी जो कि योगेश्वर के ईश्वर हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते भला। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और नृत्य करना आरंभ किया और जारी रखा। कालिए को बहुत दुख होने लगा, इतना दुख होने लगा कि उसके मुख से विष जो आ रहा था पूरा विष समाप्त हो गया। शरीर में जो भी विष का भंडार था सब समाप्त हो गया और अब खून बहने लगा नसिकों से, आंखों से, मुख से, सब जगह से, और उल्टी करने लगा कालिया। उसके सारे जो सर थे सब घूमने लगे और अति पीड़ा में कालिया था। लेकिन फिर भी जो भी थोड़ी बहुत शक्ति बची थी उसे कभी कभार एक फण उठाता कालिया कृष्ण को डसने के लिए, तो कृष्ण सीधे उस फण पे कूदकर वहां पे उसका दमन करते और देखते कि कहीं और 70वां फण उठ रहा है तो 20वें फण से 70वें फण पर फिर छलांग लगा दिया और फिर दमन कर दिया, और फिर 50वें फण में आए फिर उसका दमन कर दिया। तो कल्पना कीजिए अपने मन में कि कालिया अपने एक एक फणों को उठाते जा रहे थे और कृष्ण भगवान एक भी फण को उठने नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो सर थोड़ा भी उठाए तुरंत कृष्ण वहां हाजिर उसका दमन करते थे अपने नाजुक चरणों से। तो ऐसे कर करके कालिया की क्या दशा हुई, उसको हजारों जन्मों की नानियां याद आ गईं, एक जन्म की नहीं। और कालिया धीरे 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 से सोचने लगा कि अब ये क्या हो रहा है। और उधर देवी देवता जो हैं वो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही थी। और वास्तव में जब इतनी पीड़ा से गुजर रहा था कालिया, फिर कालिया के मन में विचार आया, ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है। कालिया के जो प्रतिद्वंद्वी था, कालिया का शत्रु, वो तो गरुड़ देव थे। गरुड़ के डर के मारे कालिया यहां पर भाग के आए थे जमुना जी में, क्योंकि यहां जमुना जी में सौभर मुनि नाम के ऋषि ने शाप दिया था कि गरुड़ अगर यहां पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कालिया जो कि गरुड़ का शत्रु था ये जानता था अच्छी तरह से, इसलिए कालिया ने यहां आकर यमुना के इस तालाब में आश्रय लिया ताकि वो गरुड़ से बच सके। तो कालिया समझता था कि गरुड़ से ज्यादा शक्तिशाली तो और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बच्चा है सुकुमार है ये तो गरुड़ से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, ये तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। और जैसे ही कालिया के मन में ये विचार आया कि मैं जिसके साथ में युद्ध कर रहा हूं, जो व्यक्ति मेरे फणों के ऊपर सुंदर नृत्य कर रहे हैं वो स्वयं साक्षात भगवान है, उस समय कालिया के मन में और शरीर में परिवर्तन हुआ। कालिया की जो पत्नियां थीं, जो कि थोड़ी दूर से ये दृश्य देख रही थी कालिया दमन का, उनको भी ये प्रतीत हुआ कि अभी हमारे पति अभी धीरे धीरे से भगवान के शरण में जाने का सोच रहे हैं। वास्तव में वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि ये जो नाग पत्नियां थीं, ये वैसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे, पूरी तरह से शुद्ध नहीं भी लेकिन बहुत गंभीर भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन अपने पति की इस अवस्था को देखकर कि वो अभक्त इतना बड़ा था, वो बड़े दुखी रहा करते थे। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो शायद उन्होंने मन में सोचा भी होगा, अगर श्री कृष्ण हमारे पति का वध भी करना चाहते हैं तो कर दें, क्योंकि हमारे पति को और भक्ति में आने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। वो इतना द्वेष करते हैं भगवान से, इतने असुरी प्रवृत्ति के हैं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं उनको भगवान के शरण में लाने के लिए। इसलिए अगर भगवान उनका प्राण भी छीन लेना चाहें तो फिर वही सही। तो इस भावना से नाग पत्नियां अपने पति कालिया के बारे में सोच रहे थे। नाग पत्नियों ने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया था कि आप ये असुरी प्रवृत्ति को त्याग लो और भगवान के शरण में जाओ, लेकिन पति ने सुना नहीं था, बल्कि उसका जहर और द्वेष और भी बढ़ता था। तो आखिर में कालिया के पत्नियों ने सोचा कि ठीक है, अगर कृष्ण भगवान उनको मारना भी चाहे तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से जब कालिया के पत्नी में ऐसे विचार आया तो उस समय कालिया ने समझ लिया था कि ये भगवान है। तो कालिया के पत्नियों ने भी समझ लिया कि कालिया समझ गए हैं कि ये कृष्ण है, ये भगवान है। तो उस समय कालिया के पत्नियों के हृदय में भी परिवर्तन हुआ। वो भी सोचने लगे कि हम पहले प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि इनको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये शायद भगवान के शरण में जाने के इच्छुक हैं। इसके चेहरे से, इसके कार्य से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शायद ये अभी भगवान का भक्त बनना चाहता है, तो फिर अभी इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब वैष्णव बनने जा रहा है हमारा पति, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, तो हम हमारे गृहस्थ आश्रम में भगवान की भक्ति करते हुए जी सकते हैं। केवल मनुष्य योनि में गृहस्थ आश्रम है, ऐसा नहीं है, हर योनि में होता है ये संबंध। तो इस प्रकार से नाग पत्नियां सोचने लगी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतना द्वेषी था हमारा पति और आज इस वक्त ये भक्त बनने जा रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए सारे नाग पत्नियां अपने बच्चों को सामने रख के भगवान श्री कृष्ण के सामने आए और सुंदर स्तुतियां अर्पण किए, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नाग पत्नियां उनकी भक्त थीं और श्री कृष्ण जान गए थे कि कालिया भी अभी उनके शरण में आने का इच्छुक है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, अभी मैं क्षमा कर देता हूं तुम्हारे पति को, आप सबके पति को, और हे कालिया, आपको तुरंत यहां से निकल जाना होगा और फिर से जहां से आए थे रमणीक द्वीप से सागर में, तुरंत वहां चले जाना और लौटकर कभी नहीं आना, और गरुड़ से डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे फणों के ऊपर अब मेरे चरण चिन्ह हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हारे प्रति कोई हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही कालिया ने और नागपत्नी ने अपनी स्तुतियां की भगवान श्री कृष्ण की, प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और नागपत्नी कालिया को लेकर तुरंत वहां से चले गए। और जैसे ही वो चले गए, जल बिल्कुल अमृत के समान हो गया भगवान की कृपा से, और फिर सारे ब्रजवासी इत्यादि वहां आकर जलपान कर सके। उधर ब्रजवासी गण बहुत खुशी से कृष्ण भगवान को वापस लेकर आलिंगन करने लगे और कृष्ण भगवान की उपस्थिति में उनको उनके खुशी की सीमा नहीं रही। ऐसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते रहे। कल सुबह हम लीला का इस भाग विस्तार में चर्चा करेंगे, जब नाग पत्नियां कृष्ण भगवान के सामने आए और उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। लेकिन फिर भी आप में से जो कल सुबह नहीं आएंगे, इसके बाद में क्या हुआ हमने संक्षेप में बता ही दिया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे और भक्तों का प्रेम बढ़ाते थे, और हमें भी उनका प्रेम या उनकी भक्ति करने के लिए अवसर उन्होंने दिया है। ब्रजवासियों की अवस्था में और हमारी अवस्था में इस वक्त अंतर इतना ही है कि उनके हृदय में प्रेम बहुत तीव्र था, शुद्ध था, लेकिन जिस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के लीला को देख रहे थे, हम भी अपने कानों से देख रहे हैं। भगवान की कथा के श्रवण करने में और उनकी लीला का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं। भगवत श्रवण और भगवत दर्शन ये एक ही है। भगवान से जो भी संबंधित कार्य है वो बराबर है। इस प्रकार से केवल भगवान की ऐसे सुंदर लीलाओं का श्रवण करने से हमारे हृदय में हम शुद्ध भक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो खास करके जो ऐसे अनुष्ठान होते हैं, इनमें हमें मंदिर आना चाहिए और अनुष्ठानों के अलावा भी सत्संग में आकर भगवान के कथा का और पवित्र नामों का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ जाएगा और संसार से विरक्ति होगी और हमारे संसार में रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। सबसे आसान तरीका इस कलयुग में भगवान की भक्ति करने का यही है, केवल भक्तों के संग में आना और श्रवण कीर्तन करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण। बहुत सरल है, इसलिए सभी से निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण प्रत्येक दिवस भक्ति भाव से करें और लाभान्वित होएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने ध्यान से श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण किया। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।